प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे वक्ता आज के प्रवचन को आरम्भ करें, सुनते हैं ये मधुर गीत।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को सत्य वचन टीम की ओर से हमारा हार्दिक अभिनंदन। हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से यूहन्ना की पहली पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने इसके चौथे अध्याय को प्रारंभ किया और 1 से 8 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम 9वें पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु और प्रेमी पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सुरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर और पवित्र क्षणों के लिए जो आपने अपनी महान करुणा से हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। दयालु प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस सत्य वचन को समझने और ग्रहण करने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और हमारी सहायता करें कि हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी घोर समस्या में उलझा हुआ है, किसी चिंता में डूबा हुआ है, प्रभु आप उसकी सहायता करें और उसे आशीष दें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो मित्र आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम नए नियम से यूहन्ना की पहली पत्री के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। चौथे अध्याय का हमारा विषय है परमेश्वर प्रेम है। अपनी इस पत्री में प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर की परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि परमेश्वर ज्योति है। उसके पश्चात वो बता रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम है और तीसरी परिभाषा है कि परमेश्वर जीवन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये छोटी सी पत्री हमें 3 परिभाषाओं से परिचित कराती है। हमने अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में इस बात पर ध्यान किया कि परमेश्वर प्रेम है। 7वें पद में हमने देखा कि हम आपस में प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रत्येक जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। वो जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है? आप कहेंगे कि हर कोई जानता है कि परमेश्वर प्रेम है। तो क्या वो बेचारी दुखियारी मां इस सत्य को जानती है जो अपने पापों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी प्रिय संतान को पवित्र नदी की भेंट चढ़ा देती है और वो मगरमच्छ और मछलियों का भोजन बन जाती है? क्या वो प्रतिमा पूजक व्यक्ति जो लकड़ी और पत्थर की पूजा करता है वो जानता है कि परमेश्वर प्रेम है? अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले जंगली लोग क्या ये जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है? वे लोग जो मानव खोपड़ियों में मनुष्य का लहू पीते हैं, क्या वो जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है? क्या वो पुजारी धर्म का अगुवा जो लोगों पर कर्मों का बोझ लाद लाद कर उनसे कहता है कि कर्मों से ही मोक्ष प्राप्त होगी, ये जानता है कि परमेश्वर प्रेम है? क्या बंदी गृह में हत्या के जुर्म में कैद हत्यारा जानता है कि परमेश्वर प्रेम है? आप कहेंगे सभी सभ्य लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। मेरे मित्र, मेरा प्रश्न ये है कि वे कैसे जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है? संभवतः आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको स्वयं ही बता दूं कि जब तक ये रहस्य स्वर्ग से प्रकट नहीं हुआ और पवित्र बाइबल में लिखा नहीं गया, तब तक विश्व का कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था कि परमेश्वर प्रेम है। मनुष्य की खोज केवल इतनी है कि प्रेम परमेश्वर है, वो केवल इतना जानता है, किंतु ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि परमेश्वर प्रेम है और इस सत्य के विषय में हमें पवित्र बाइबल ही बताती है। केवल पवित्र बाइबल ये प्रकट करती है कि परमेश्वर प्रेम है। संसार की किसी भी धार्मिक पुस्तक में, किसी साहित्य में ये नहीं बताया गया कि परमेश्वर प्रेम है। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बाइबल हमको ये बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार प्रेम करता है। स्वाइये नमे पद को आप हमारे साथ देखिए, पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय नमा पद। परमेश्वर का प्रेम हमें इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। मित्रवर, आप ऐसा प्रेम प्रकृति में नहीं पाएंगे। प्रकृति में आप खूनी दांत और नुकीले पंजे पाएंगे। आप परमेश्वर के प्रेम को केवल कलवरी नामक पहाड़ी पर पाएंगे। वहां आप पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। जब आप कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को लहूलुहान दशा में क्रूस पर लटका हुआ देखेंगे, जहां आप परमेश्वर के पुत्र को, जो निर्दोष और निष्कलंक था, उसका कोई दोष नहीं था, उसके सिर पर कांटों का ताज देखेंगे, उसके हाथों में कीलों को छिदा हुआ देखेंगे, उसके पैरों में कीलों को छिदा हुआ देखेंगे, उसके बदन पर कोड़ों की मार के निशान देखेंगे और 6 घंटे उसको क्रूस पर लटके हुए देखेंगे, तो आप समझेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। मेरे मित्र, आप यहीं इसी स्थान पर परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। कैलवरी के क्रूस पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। वो प्रेम जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था, देहधारी हुआ। नमापद बताता है, परमेश्वर का प्रेम हम में इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, और ये उसके प्रेम का प्रमाण है। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री के 5:7-8 में लिखते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है कि किसी धर्मी व्यक्ति के लिए कोई अपना प्राण दे दे, किंतु परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। 5:6 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब हम दुर्बल ही थे, तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या परमेश्वर में ही पाई जाती है, हम में नहीं। हम परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम वास्तव में प्रेम के योग्य नहीं हैं, और कुछ तो तनिक भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यह है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने पहले होकर हमसे प्रेम किया है, और परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। जब परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को अपना इकलौता पुत्र कहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उनका परमेश्वर के साथ एक अनोखा संबंध है, एक अद्भुत संबंध है। और इस प्रकार यीशु मसीह सृजी हुई वस्तु नहीं है। परमेश्वर पिता सृजे हुए स्वर्ग दूतों को अपना पुत्र कहते हैं, और परमेश्वर पिता ये भी कहते हैं कि जो मसीह पर विश्वास लाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। किंतु परमेश्वर पिता कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक लौता पुत्र है। और ये बात बड़ी रुचिकर है कि यही बात परमेश्वर पिता इसहाक के विषय में भी कहते हैं। इब्रानियों की पत्री के 11:17 में हमको बताया गया है कि विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थीं, वही अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाने पर था। मित्रवर, हम जानते हैं कि इसहाक से पूर्व इस्माइल थे और वो अब्राहम से रंग रूप में अधिक मिलते जुलते थे। इसके अतिरिक्त भी अब्राहम के अन्य पुत्र भी थे, किंतु इसहाक इब्राहिम के इकलौते पुत्र कहलाए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह अनोखा व अद्वितीय व्यक्ति था। इसहाक अद्भुत और अद्वितीय थे। उनका जन्म आश्चर्यजनक रीति से हुआ था और जो संबंध इब्राहिम का इसहाक से था वह अन्य पुत्रों के साथ नहीं था। इसी प्रकार परमेश्वरत्व में जो स्थान प्रभु यीशु मसीह का है वो ये है कि वह अनंत काल के परमेश्वर के अनंत काल के पुत्र हैं। हम अनंत काल के पुत्र के कारण अनंत काल के पिता को जानते हैं। यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र पिता का अनोखा अर्थात अद्वितीय पुत्र है। अन्य लोग सृजे गए पुत्र हैं, वे सृष्टि हैं, जैसे आदम तथा स्वर्गदूत अथवा विश्वासी जन जो मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, किंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अद्वितीय पुत्र हैं। उन्हें इकलौता पुत्र कहा गया है। प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर का प्रेम इसमें हम में इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। किंतु ये जीवन हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, वरन क्रूस पर उनकी मृत्यु के द्वारा हम इस जीवन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के इकलौते पुत्र की मृत्यु हमें जीवन प्रदान करती है। परमेश्वर ने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि पापी मानव जीवन प्राप्त करे। यही परमेश्वर का प्रेम है। तब चौथे अध्याय के 10वें पद को देखें। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अब यहां प्रेरित यूहन्ना ने अपनी प्रथम पत्री के 2वें अध्याय के 2वें पद में एवजी शब्द का प्रयोग किया है। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है और न केवल हमारे वरन समस्त संसार के। प्रायश्चित का अर्थ है दयासन। ये अंग्रेजी भाषा में प्रोपिसिएशन है, PROPITIATION, प्रोपिसिएशन। पुराने नियम में ये शब्द एटोनमेंट है, ATONEMENT, एटोनमेंट, जिसका अर्थ है क्षतिपूर्ति करना या हर्जाना भरना। प्रोपिसिएशन जो नए नियम में प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है शांत करना अर्थात संतुष्ट करना। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु द्वारा क्षतिपूर्ति की और परमेश्वर को संतुष्ट किया अर्थात उसे मना लिया। 10वां पद हमें यही बताता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। श्रोता मित्र, हमने परमेश्वर से पहले होकर प्रेम नहीं किया। हमने उसके प्रेम की ओर दृष्टि भी नहीं की। हमने उसके प्रेम को पहचाना भी नहीं। इस कार्य में परमेश्वर ने स्वयं पहल की है। परमेश्वर ने स्वयं अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया और इस प्रेम के वशीभूत होकर उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। ये प्रेम उसने हमसे तब किया जबकि हम अयोग्य व घृणित पापी थे, परमेश्वर के बैरी थे। उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ऐसी दशा में परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया और आज हमें इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि मैं और आप जब पापी ही थे, उस समय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और हम पर अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर मसीह यीशु हमारे लिए मरा। रोमियो की पत्री 5:8 में हमें ऐसा ही बताती है। अब आप कहेंगे कि क्या मैं उस समय था जब परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ? क्या मेरे पश्चात के लोग उस समय थे या होंगे? हाँ मेरे मित्र, आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, किंतु परमेश्वर ने हमारी मोक्ष का मार्ग तैयार कर दिया। यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, कोई बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14:6 में आप इसे पढ़ सकते हैं। किंतु यह विचार करना कोरी मूर्खता है कि परमेश्वर प्रेम है इसलिए सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा और सभी लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। मनुष्य को पापों से क्षमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह विचार ठीक नहीं। किंतु स्मरण रहे, जो परमेश्वर के मार्ग की ओर से भटके हुए हैं वे अनंत विनाश के भागी होंगे, और जिन्होंने मार्ग से प्रवेश पा लिया है वे अनंत काल के राज्य के लिए बच गए हैं, सुरक्षित कर दिए गए हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको परमेश्वर के ढंग ही को अपनाना होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका अपना ढंग नहीं चलेगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के पश्चात आपको परमेश्वर के साथ रहना है, और इसलिए जो ढंग परमेश्वर ने बनाया है आपको उसी ढंग के अनुसार परमेश्वर से मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि मोक्ष पृथ्वी से नहीं है, स्वर्ग से है, परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य का उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा है और किसी वस्तु के द्वारा नहीं। तब 11 में हमको बताया गया है कि प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन किया है। उन्होंने कलवरी नामक स्थान पर अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु द्वारा ये प्रेम प्रकट किया है। समस्त संसार ने परमेश्वर के प्रेम को देखा है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उनकी संतान भी आपस में ऐसा ही प्रेम रखे, अर्थात उसके प्रेम को संसार देखे और पहचाने कि वास्तव में ये परमेश्वर की संतान है। 4:12 को देखें, जहां लिखा है, परमेश्वर को कि कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। मित्र, कुछ लोग इस कथन को चुनौती दे सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे आदि पिता आदम ने तथा प्रभु के सेवक मूसा ने परमेश्वर के आमने सामने बातें की, उन्होंने परमेश्वर का आमना सामना किया। यशाया भी कहता है कि मैंने परमेश्वर को देखा। यशाया नबी की पुस्तक के 6:1 में हम ऐसा पढ़ते हैं। आप ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर भी प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल परमेश्वर इकलौता जो पिता की गोद में है, अर्थात उसके सीने में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। परमेश्वर को प्रकट करने वाले केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। परमेश्वर को किसी ने प्रकट नहीं किया। बाइबल पवित्र शास्त्र स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उनके आने के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य कि वो इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर को मानव के सामने प्रकट करें। दूसरा उद्देश्य कि वो मानव के छुटकारे के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दें। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर आत्मा है और उसे वास्तव में कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य फिलिप्पुस के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से जब कही, जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें पिता को दिखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। किंतु उन्होंने पिता को कैसे देखा? मेरे मित्र, वो मानव देह में था, इसलिए एक विशाल जनसमूह उसे पहचान ना सका। वह नासरत ग्राम में युवा हुआ और लोग ये ना जान पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र था। वे लोग परमेश्वर को ना देख सके, और आज भी ऐसा ही है। मनुष्य परमेश्वर को देखने में असमर्थ है, किंतु प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, निसंदेह परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु आज परमेश्वर को प्रकट किया जा सकता है। किंतु कैसे? विश्वासियों द्वारा आपस में एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर को देह में प्रकट किया जा सकता है। अब आज हम यहीं ठहर जाते हैं, अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दें और आपकी सहायता करें। आमीन।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्यवचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्यवचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओं, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Thank you.